السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بھی اسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن آ کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائی کیو این اے، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں الحمدللہ پارا نمبر 21 ہے. اتلو ما اوحیا، سورہ العنکبوت جاری ہے. اس کی آیت نمبر 45 سے یہ پارا شروع ہوتا ہے. تلاوت کا حکم ہے، تلاوت قرآن. اتلو ما اوحیا، اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کیا گیا ہے. کتنا اہم آغاز ہے. پہلا سوال اس کے فائدے سے متعلق ہے. تلاوت قرآن کے فائدے کیا ہیں؟ تلاوت قرآن اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس کی فرما برداری کہ جو اس نے حکم دیا، پڑھ. اتلو ما اوحیا، پڑھ. اور اس کا حکم ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انڈائریکٹلی امت کے ہر فرد کو. اتلو ما اوحیا الیک، اور یہی ذکر اکبر ہے، اللہ کا سب سے بڑا ذکر. ولذکر اللہ اکبر، تلاوت کے ساتھ تفہیم تعمیل کو آسان بناتی ہے. اگر تلاوت کے ساتھ فہم بھی ہو تو یہ عمل کو آسان بناتا ہے. اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں نا، کیسے صبر آئے قرآن سے، بائے تلاوہ، بائے فہم، انڈرسٹینڈنگ. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت 32 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنثبت به فؤادك، تاکہ ہم اس سے تیرے دل کو جما دیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے احکامات کو اپنی ذات پر نافذ کیا جائے. قرآن کی تلاوت باعث اجر و ثواب. اس کے ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں ہیں. جیسے حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف ہے. تلاوت قرآن سوچ سمجھ کر پڑھنے سے اس کے معارف و حقائق پڑھنے والے پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں. تلاوت قرآن سے دوسرے لوگ بھی اس کے مواعظ اور علوم برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں. دعوت و اصلاح کے فریضے کی اصل بنیاد تلاوت قرآن ہی ہے. پھر جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت کو تسلیم نہ کریں، ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے. قرآن کریم کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کی تلاوت جس طرح بھی ہو فائدے اور ثواب سے خالی نہیں، مگر اس کا حقیقی فائدہ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب اسے سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ اس کے بغیر اس پر تدبر ممکن نہیں، جو اس کا اصل مقصد ہے. جیسے سورہ محمد آیت 24 میں فرمایا، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں، یعنی تالے، لاک. سمجھ کر پڑھنے ہی سے آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، اور اسی سے اس میں باطل سے مقابلے کا جذبہ اور قوت ایمانی پیدا ہوتی ہے. اکثر اہل کتاب کی بربادی کا باعث یہی ہوا کہ وہ تعلیم اور عمل کے بغیر تورات کے لفظوں کی تلاوت پر قانع ہو گئے کہ بس تلاوت کر لیں کافی ہے. آج کل مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے، ختم تعداد اور بس پڑھ لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ پڑھنا ذریعہ ہے سمجھنے کا. اگر سمجھ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اگر عمل بھی نہ ہو تو، یعنی اگر عمل نہیں تو پڑھنا ہرگز کافی نہیں ہے. اور عمل سمجھ سے آتا ہے، فہم سے حاصل ہوتا ہے، علم سے حاصل ہوتا ہے. العنکبوت 45 میں ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے بے حیائی اور برائی سے روکنے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، جن میں سے اہم ایک یہ کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے انسان بے حیائی اور برائی سے باز آ جاتا ہے. ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ख़ास तौर पर टीन एज बॉयज़ जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इवन लड़कियां भी जब नमाज़ पढ़ रही होती हैं तो माँ बाप की भी फरमाबरदारी की झलक उनकी शख्सियत में नज़र आ रही होती है। इसी तरह और भी दीगर लहव लाभ, खेल और स्क्रीन पर ओवर टाइम और कई चीज़ों से बचे होते हैं जब वो 5 वक्त नमाज़ की पाबंदी करते हैं, लेकिन जब नमाज में सुस्ती होने लगती है हर बुराई बढ़ जाती है। तो ये वाकई मौसर है कि इंसान नमाज पढ़ने से बेहयाई और बुराई से पास आ जाता है, ज़ाहरी लिहाज से भी ये होता है। और दूसरा ये कि नमाज का नमाजी से बातनी तकाज़ा तो यही है, यानी नमाज तो वाकई रोकती है, अब नमाजी रुके रहे ना रुके, यहाँ नमाजी की तो नहीं नमाज की बात है ना कि इन सलात, आप नमाज का तर्जमा देख लें, क्या नमाज तौहीद, क्या नमाज सुन्नत की पैरवी, क्या नमाज इबादत में खुशो खुजू, क्या नमाज रब की फरमाबरदारी, उसके आगे झुकना, ये नहीं सिखाती। नमाज तो सिखाती है, नमाज का नमाजी से तकाजा है कि वो बेहयाई और बुराई से पास आ जाए। ये अलग बात है कि नमाजी नमाज में तो इसका इकरार करे मगर नमाज के अलावा उस पर अमल दरामद ना हो। तो ये दोनों ही मतालिब दुरुस्त हैं और एक दूसरे को लाजिम व मलजूम हैं। वो आदमी जो नमाज को उसके औकात पर जमात के साथ अदा करे, उसके अरकान व शुरूत और खुशू का ख्याल रखते हुए सही तरीके से अदा करे, उसमें पढ़ी जाने वाली फातिहा और दूसरी दुआओं के ज़रिए से दिल की हाज़िरी के साथ अल्लाह से मनाजात करे और बार बार रब्बे गफिरली और इस्तिग़फ़ार की दूसरी दुआओं के साथ बख्शिश की दरख्वास्त करे और इस पर हमेशगी इख्तियार करे, तो यकीनन नमाज उसे अमली तौर पर भी प्रैक्टिकली भी बेहयाई और बुराई से रोक देगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, फ़लाँ शख्स रात नमाज़ पढ़ता है यानी क़याम में गुजारता है, सुबह होती है चोरी कर लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अन करीब उसका ये अमल उसे इस काम से रोक देगा, यानी ये नमाज उसे चोरी से भी बचा लेगी। सुबहान अल्लाह, ये जो तू कह रहा है ना कि वो सुबह को चोरी करता है, तो नमाज की प्रैक्टिस उसे चोरी से भी बचा लेगी। इसी तरह बाज़ मुफस्सिरीन ने नमाज के बुराई और बेहयाई से रोकने का मतलब ये भी बयान किया कि जितनी देर आदमी नमाज में रहेगा उतनी देर तो कम से कम बेहयाई और बुराई से बाज ही रहेगा। एक मतलब ये भी है, यानी ज़ाहरी लिहाज से बंदा जब नमाजी होता है वो बुराइयों से रुका रहता है, क्योंकि नमाज रेगुलरिटी, नमाज फरमाबरदारी, नमाज इस्लाह ही सिखाती है और दिन में 5 वक्त इस पर अमल इंसान को काफ़ी हद तक रोक देता है। और फिर मानवी लिहाज से देखा जाए तो नमाज तो रोकती है, बंदा रुके ना रुके, नमाजी अमल पैरा हो ना हो ये अलग बात है। और फिर ये कि नमाजी कम अज़ कम 5 टाइम हर हर नमाज के ड्यूरेशन में बेहयाई और बुराई से रुका ही रहता है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वजह है कई लोग नमाज अदा करते हैं मगर बेहयाई और बुराई से पास नहीं आते। इसके 2 जवाब हैं, एक ये कि अगर वो नमाज को इखलास और उसके अरकान व आदाब और खुशू का ख्याल रखते हुए दिल की हाज़िरी के साथ रोज़ाना 5 मरतबा मस्जिद में बाजमात अदा करते तो यकीनन उनकी नमाज उन्हें फहशा और मुनकर से बाज रखती, मगर इसका ये असर जाहिर नहीं हुआ तो मतलब ये है कि नमाज में खलल है, दवा के अज्जा पूरे नहीं या दवा के साथ परहेज़ नहीं, परहेज़ भी तो ज़रूरी होता है तभी शिफा नहीं हुई। दूसरा ये भी है कि नमाज तो कहती है जब तू हर काम छोड़कर मस्जिद में आ गया, तेरे बावजू होने से और तेरे अदा किए जाने वाले अल्फाज से तेरे रब के सिवा कोई वाकिफ़ नहीं, फिर भी तू बेवजू नमाज नहीं पढ़ता, नमाज में फजूल बात नहीं करता, तो जिस रब के डर से नमाज में उसकी नाफरमानी से परहेज़ करता है, नमाज के बाद भी तुझे उसके खौफ से हर बेहयाई और बुराई से बचना लाजिम है। नमाज बहरहाल बेहयाई और बुराई से मना करती है, कोई इसका कहा ना माने तो उसकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी यानी अनपढ़ होना खामी है? العنكبوت 48 है, वमा कुंत तत्लू मिन कब्लिही मिन किताबिन वला तखुत्तुहू बियमीनिक, और तू उससे पहले ना कोई किताब पढ़ता था और ना उसे अपने दाएं हाथ से लिखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना बिल्कुल भी खामी नहीं, बल्कि ये अल्लाह की शान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील है। यानी अगर आप पढ़ते होते या हाथ से लिखते होते तो बातिल परस्तों के लिए शक का कोई मौका हो सकता था कि आपने अगली किताबें पढ़कर ये बातें लिख ली हैं, उन्हीं को आहिस्ता आहिस्ता अपने अल्फाज में सुना रहे हैं, जैसे कॉपी पेस्ट होता है, या इसी तरह प्लेजरिज्म। हालांकि ये भी उनका कहना गलत ही होता, क्योंकि कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, बल्कि दुनिया के तमाम पढ़े लिखे इंसान मिलकर और कुल मखलूक को साथ मिलाकर भी इस बेमिसाल किताब की एक सूरत जैसी सूरत पेश नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप पढ़े लिखे होते तो झूठे लोगों को बातें बनाने का मौका मिल सकता था। जब आपका अनपढ़ होना उनके हाँ मुसल्लम है तो इस शुबह का इजाला भी मुमकिन ना रहा। ये खामी नहीं, खूबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल अनकबूत 69। वल्लदीना जाहदू फीना, और वो लोग जिन्होंने हमारे बारे में जिहाद किया, पूरी कोशिश की। इससे मुतालिक सवाल है कि जिहाद किसको कहते हैं और कौन सा जिहाद अफजल है, क्योंकि ये लफ्ज़ यही आया ना, जाहदू फीना। जाहदा यजहदू का माना कोशिश करना, यानी किसी के मुकाबले में पूरी कोशिश लगा देना, इसको जिहाद कहते हैं। मोमिन को अल्लाह के अहकाम पर कारबंद रहने के लिए बहुत सी चीज़ों के मुकाबले में जिद्दोजहद करना पड़ती है। उसे अपने नफ्स का मुकाबला करना पड़ता है, शैतान का भी, जिसने उसकी दुश्मनी की कसम खा रखी है, और अपने घर से लेकर तमाम दुनिया के उन इंसानों का भी जो उसे राह हक से रोकने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ़ भी पूरा एक कोशिश मुकाबला करना पड़ता है। हत्ता कि उसे उस कोशिश में लड़ाई भी करना पड़ती है जिसमें वो दुश्मन को कत्ल करता है और ख़ुद भी कत्ल हो जाता है। तो ये है असल जिहाद। कुरान और हदीस में जिहाद का लफ्ज़ अक्सर इसी माना में आया है। सबसे ऊंचा दर्जा इसका वो है जब वो सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा कर क़ुरबान हो जाता है। अब्दुल्ला बिन हबशी रदी अल्लाह अनु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कौन सा जिहाद अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुशरिकीन के साथ अपने जान और माल के साथ जिहाद करे। पूछा गया, फिर कौन सा कत्ल सबसे ऊंची शान वाला है? फरमाया, जिसका खून बहा दिया जाए और उसका उम्दा घोड़ा तक काट दिया जाए, यानी जान माल हर चीज़ की कुर्बानी। ये है अफजल जिहाद। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस मकाम पर एक रिवायत नकल की कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम छोटे जिहाद यानी कुफार की लड़ाई मुकाबला इससे बड़े जिहाद यानी नफ्स के जिहाद की तरफ वापस पलट आए हैं। ये किसी शख्स का कौल है, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करना ये झूठ और एक इंतहाई जुरतमंदी का काम है कि एक चीज़ साबित नहीं है उसकी निस्बत की जाए। जिहाद अकबर वही है जिसका हदीस में जिक्र आया है, जान माल की कुर्बानी, खून बहाना, अपनी सवारी घोड़ा तक अल्लाह की राह में काट दिया जाए। रहा नफ्स के साथ जिहाद, इसके साथ कंपेयर करना, तो ये भी सबसे बड़ा जिहाद तो उसी का है जो अल्लाह की राह में जान दे दे, यानी सिर्फ नफ्स का नफ्स की हद तक रह जाए तो क्या फ़ायदा, जब तक अमली, जिस्मानी, माली कुर्बानी ना हो। कुछ लोगों ने क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह को छोटा करार दिया और नफ्स से जिहाद को ये बड़ा करार दिया, फिर इस ट्रेंड को फ़रोग़ दिया कि हुजरों में चिल्लाकशी के लिए बैठ गए, इसको जिहाद अकबर और अफजल करार दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान दुनिया में मغلوب हुए और काफिर गालिब। काश के ये हजरत राहिबों के तरीके के बजाय वो जिहाद करते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने किया। सोचें कि अगर यही जिहाद यानी चिल्लों वाला और ये नफ्स के साथ लड़ने वाला ही होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही करते, अगर इस तरीके से कुफार का मुकाबला हो सकता, इस्लाम को सरबुलंदी मिल सकती। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैदान अमल में जिहाद किया और सहाबा ने किया, जिसके साथ वो सिर्फ 10 साल के अरसे में पूरे जजीरा अरब के मालिक बन गए, फिर नसफ़ सदी के अंदर अंदर मशरक़ से मगरब तक के फरमा रवा बन गए, ये हुजरों में चिल्लाकशी से नहीं होता। ये समझने की बात है। सूरह अल अनकबूत के बाद सूरह अर रूम शुरू होती है। इसकी इब्तदाई आयात के पस मंज़र के हवाले से सवाल है जो कि बहुत अहम है। सूरह रूम की इब्तदाई आयात में दो ऐसी पेशीन गोहियाँ की गई हैं, प्रिडिक्शन, जो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की रिसालत के हक होने पर ज़बरदस्त दलील हैं। उनमें से पहली पेशीन गोई, अगर आज रूम शिकस्त खा गया है तो चंद ही सालों में रूम फिर ईरान पर गालिब आ जाएगा। और दूसरी पेशीन गोई कि अगर आज मुसलमान मुशरिकीन मक्का के हाथों मजलूम और मकहूर हैं तो इनको भी उसी दिन मुशरिकीन मक्का पर गलबा हासिल होगा जिस दिन रूम ईरान पर गालिब आएगा। ये यानी एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई पेशीन गोई। एक तो روم کا ایران پر غالبانہ، دوسرا مسلمانوں کا مشرکوں پر غلبہ۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں، ٹو سپر پاورز۔ ایک روم کی عیسائی حکومت جو دو باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھے، ایک یہ کہ دونوں اہل کتاب تھے، دوسرے دونوں آخرت پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور قریشیوں کی مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی، اور قریش کی سفارت بری طرح ناکام ہوئی اور انہیں خالی ہاتھ وہاں سے آنا پڑا۔ دوسری بڑی طاقت ایران کی تھی، جو دو وجہوں سے مشرکین مکہ سے قریب تھے۔ ایک یہ کہ ایرانی دو خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے، اور مشرکین بت پرست تھے، اور دوسرے یہ کہ دونوں ہی آخرت کے منکر تھے۔ انہی وجوہ کی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 برس کا وقفہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت روم اور ایران میں جنگ شروع تھی، اور اس کی خبریں مکہ میں بھی پہنچتی رہتی تھیں۔ جب ایران کی فتح کی کوئی خبر آتی تو مشرکین مکہ بغلیں بجاتے اور اس خبر کو اپنے حق میں نیک فال قرار دیتے، اور کہتے کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے، ایسے ہی ہم بھی کسی وقت مسلمانوں کا سر کچل دیں گے۔ اس جنگ میں ایرانیوں نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی، جس کے نتیجے میں عرب کے ساتھ ملنے والے علاقوں میں روم کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا۔ یہ خبر مشرکین کے لیے بڑی خوش کن اور مسلمانوں کے لیے بہت صدمے کا باعث تھی۔ مشرکین نے انہیں یہ کہہ کر چھیڑنا شروع کر دیا کہ جس طرح ایران نے روم کو ختم کر دیا نا، ایسے ہی ہم بھی تمہیں مٹا دیں گے۔ ایسے حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، سورہ روم کی ابتدائی آیات۔ اگرچہ بظاہر اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نہیں تھے، مگر مسلمانوں کو اللہ کی آیات پر پورا یقین تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے اور مکہ کے کناروں میں ارد گرد چیخ چیخ کر یہ آیات سنانے لگے۔ اسی یقین کی بنیاد پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے ساتھ شرط بھی باندھ لی، اور شرط کی مقدار طے کر لی۔ مشرکین مذاق اڑانے لگے کہ کس طرح مظلوم اور مقہور قوم بھلا غالب آ سکتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 5 سال مدت مقرر کر لی، مگر رومی غالب نہ آئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا تم نے یہ مدت 10 سے کم تک کیوں مقرر نہ کی؟ البزع کا لفظ 10 سے کم تک ہوتا ہے، اور جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی اہل فارس پر غالب آ گئے، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس مدت کے لیے فرمایا فی بزع سنین، جبکہ بزع کا لفظ 10 تک بولا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا عرصہ تو مقرر کرتے، اور پھر واقعی ایسے ہوا، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور یاد رہے کہ یہ شرط لگانا یہ شرط کی ممنوعیت سے پہلے کی بات ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قرآن کریم میں نمازوں کے اوقات کن کن مقامات پر بیان ہوئے ہیں؟ اچھا، دیکھا جائے تو ایز اٹ از ایگزیکٹ احادیث سے تو واضح ہیں، قرآن سے بھی دلیل ملتی ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل 78، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ یہاں لدلوک الشمس، دالکت الشمس کا معنی سورج غروب ہو گیا، یا زرد ہو گیا، یا مائل ہو گیا، یا آسمان کے وسط سے ڈھل گیا۔ اس میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، سورج ڈھلنے کے وقت یعنی ظہر، زردی کی ابتدا کے وقت یعنی عصر، اور غروب ہونے کے ساتھ یعنی مغرب کی نماز۔ اور غسق اللیل ہے نا، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غسق اللیل کا معنی شروع رات کا اندھیرا، شفق غائب ہونے کے ساتھ اندھیرا مکمل ہوتے ہی عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ وقرآن الفجر یعنی فجر کی نماز قائم کر، یہاں نماز کو قرآن فرمایا کیونکہ قرآن نماز کا اہم جز ہے، اور نماز فجر میں قراءت افضل ہے۔ اسی طرح یہ سورہ الروم، اس میں بھی نمازوں کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، آیت 17 اور 18، حین تمسون وحین تصبحون۔ اسی طرح عشجا وحین تظہرون، حین تمسون جب تم شام کرتے ہو، مراد مغرب اور عشاء، حین تصبحون جب تم صبح کرتے ہو، مراد فجر کی نماز، عشجن پچھلے پہر سے مراد عصر کی نماز، اور تظہرون ظہر کے وقت، ظہر کی نماز مراد ہے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت 130، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. قبل طلوع الشمس مراد فجر کی نماز، قبل غروب مراد ظہر عصر کی نماز، من آناء الليل مراد مغرب عشاء کی نماز، اور اطراف النہار دن کے کناروں سے فجر اور عصر کی نماز، کیونکہ فجر دن کے پہلے کنارے میں ہے اور عصر دن کے آخری کنارے میں، رہی مغرب تو وہ رات میں شامل ہے. تو یہ وہ مختلف سورہ روم اور دیگر مقامات ہیں جن سے نمازوں کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، جیسے سورہ ہود بھی ہے آیت 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. طَرَفَيِ النَّهَارِ دن کے دو کنارے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہار دن ہوتا ہے، اس میں تین نمازیں آ جاتی ہیں، زوال سے پہلے والے کنارے میں فجر اور زوال کے بعد والے میں ظہر عصر، اور زلفن زلفتن کی جمع مراد دن کے آخری حصے کے قریب کے اوقات مراد مغرب عشاء، کیونکہ وہ دن کے قریب ہوتی ہیں. نیکسٹ کوشچن سورہ الروم آیت 21 سے متعلق ہے، انسانوں کے آپس میں شادیوں اور سکون کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تم ہی سے بیویاں پیدا کیں. جو سوال آتا ہے نا کہ کیا جن و انس کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام کہانیاں یکسر افسانے ہیں جن میں انسانوں اور جنوں کے درمیان زوجیت اور توالد و تناسل کا ذکر ہے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ راہب اور جوگی جو انسانی فطرت سے جنگ کر کے عورتوں سے قطع تعلق کے ساتھ سکون تلاش کرتے رہے یا کر رہے ہیں، سخت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ فطرت سے جنگ کا انجام ہمیشہ شکست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذکر آپس میں تعلق سے کیا ہے، اپنی بیویوں سے، اور من انفسکم تمہارے اپنے یعنی انسانوں میں سے. جس طرح بھوک کے وقت کھانا اللہ سے تعلق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ انسان کی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح شادی اللہ سے تعلق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ انسان کے لیے سکون کا باعث اور اس کی بنیادی ضرورت ہے. اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی. تو نکاح، حلال تعلق، پھر یہ کہ اس تعلق میں سکون، یہ تلاش کرنا اور اس کے علاوہ سے بچنا، اور اس کو کسی بد سکونی یا مذاق کا نشانہ نہ بنانا. بعض لوگ شادی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا اور بیوی اور ذمہ داری کے حوالے سے بڑی میمز اور میمکری میں مبتلا رہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب ہے، تو پھر اس کا مذاق اڑانا کیسے، جبکہ ابن آدم کا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. نیکسٹ کوسچن ہے، تحفے کے بدلے کا انتظار کرنا کیسا ہے. سورہ الروم آیت 39 میں غور کریں، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کیا نہیں بڑھتا. جو شخص کوئی ہدیہ دے جس سے اس کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ اس سے اس کے بدلے سے زیادہ دیں گے، جیسے میں نے 1000 دیا تو وہ 2، میں نے 3 دیا تو وہ 5، اس امید سے دے تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی ثواب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتا تو آپ اس سے بڑھ کے دیتے، یعنی اگر یہ کوئی خود احسان کا بدلہ احسان اس سے بڑھ کے کرتا ہے تو یہ اس لیے تو جائز ہے، بہتر ہے، لیکن اس امید پر دینے والا اگر دیتا ہے تو پھر وہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے. اور جہاں تک رہا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں تاکہ اللہ اس کو اس کا بہتر بدلہ دے دے. تو یہ کچھ مینرز ہیں زندگی کے حوالے سے جو لالچ کو اور ایک سودی سوچ کو مٹاتے ہیں، ورنہ تو سود میں اور اس میں کیا فرق ہوا کہ آپ بھی کچھ دے کے ڈبل کی امید رکھے ہوئے ہیں، اس امید پر دیا تو لا یربو عند اللہ. نیکسٹ کوسچن ایک شعر سے متعلق ہے جو انسان کو زندگی کی حقیقت اور مردوں کی بے بسی واضح کر دیتا ہے. شاعر کہتا ہے، لقد اسمعت لو اسمعت حیا ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن لا حیاۃ لمن تنادی ولكن انت تنفخ فی الرمادی. تم نے اپنی بات یقیناً سنا دی، اگر تو کسی زندہ کو آواز دیتا تو واقعی وہ سن لیتے، مگر جسے تو آواز دے رہا ہے، قبروں کو، قبر والوں کو، مزاروں کو، اس میں زندگی ہی نہیں. اور اگر کوئی معمولی سی آگ بھی ہوتی जिसमें तू फूंक मारता तो वो रोशन हो जाती, मगर तू तो राख में फूंके मार रहा है। कितना वाज़े अकीदा है सिवाय मौता के हवाले से, इन्नका ला तुस्मिउ अल मौता। यही शेर होते हैं जो अकीदा बनाते या बिगाड़ते हैं, तो कॉन्शियस रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह लुकमान जो अर्रूम के बाद आती है, इसकी वजह तस्मिया। इस सूरह में वो नसीहतें हैं जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को कीं, इसी मुनासबत से इसका नाम लुकमान है। जैसे आयत 12 और 13 है, वलक़द आतैना लुकमान और वइज़ क़ाला लुकमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीम लुकमान थे कौन? मुफस्सिरीन के इनके बारे में बहुत सी आरा हैं, लेकिन राजह कौल यही है कि लुकमान सालेह यानी नेक और दाना शख्स थे, इसीलिए लुकमान हकीम कहा जाता है, लेकिन नबी नहीं थे। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले भी इनकी हिकमत और दानाई के वाक़यात अरब में मशहूर थे। जाहिली शुआरा खुतबा अपने कलाम में उनका जिक्र करते थे। अल्लाह ताला ने उनके एतराफ़ को दलील के तौर पर पेश किया कि तौहीद की बात सिर्फ पैगंबरों ही के ज़रिए नहीं बल्कि अक्ल व हिकमत का तकाजा भी यही है। पहले आकिल और दाना लोग भी यही बातें कहते चले आए हैं। तुम्हारा अपना मशहूर हकीम लुकमान अब से बहुत पहले यही कुछ कह गया, ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ये सूरह लुकमान में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सूरह लुकमान की आयत 6 से मुतालिक है, लहवल हदीस से क्या मुराद है? मैं यश्तरी लहवल हदीस। लहव हर उस बात या काम को कहते हैं जो इंसान को उसके मकसद की चीज़ से गाफिल करते। ज़रा इस म्यूज़िक और मौसीकी को देखें, जब मॉल्स और फूड स्ट्रीट या हॉल्स में इस तरह की एक बैकग्राउंड ऑडियो आ रही होती है, साउंड आ रही होती है, तो मकसद क्या होता है? ताकि कस्टमर्स हर कोई अपने आप में मगन लगन लगा रहे और किसी को इर्द गिर्द का कोई होश ना हो, तो फिर लहवल हदीस हो गया ना। यानी लहवल हदीस का मतलब देखें, लहव कहते किसे हैं? हर उस काम या बात को जो इंसान को उसके मकसद की चीज़ से गाफिल करते, इर्द गिर्द से गाफिल करते। लहवल हदीस वो बातें जो दिलों को गाफिल कर देने वाली और अजीम मकसद से रोक देने वाली होती हैं। इसमें हर हराम कलाम, हर बातिल और ऐसे अकवाल, हर हिजियान दाखिल है जो कुफ्र फिस्क मासीयत की रगबत पैदा करे। वो अकवाल हक़ को रद्द करने वाले लोगों के हों जो बातिल के साथ बहस करके हक़ को जेर करने की कोशिश करते हैं, या गीबत चुगली झूठ और गालम गलोच की सूरत में हों, या गाने बजाने शैतान के बाजों और गाफिल कर देने वाली दास्तानों जैसे कवाली नाइट्स वगैरह और अफसानों की सूरत में हों, जिनका ना दुनिया में कोई फ़ायदा ना आखरत में। तो लोगों की ये किस्म वो है जो हिदायत वाली बात को छोड़कर लहव वाली बात ख़रीदती है। तो ये तमाम चीज़ें और गाना बजाना भी इसमें शामिल है। इसका मफहूम बहुत वसी है। हराम गिना यानी नाजायज़ अल्फाज और धुनों पर मुश्तमिल गाने, इसी तरह ऐसी चीज़ें, ये तमाम इसमें शामिल हैं। तबरी में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से है, उन्होंने कसम उठाकर फरमाया कि इससे मुराद गिना है। आज लोग कहते हैं कि गाना गाना हराम नहीं है। असल में गाना अगर तो जायज़ कलिमात और नेकी पर उभारने वाले अशआर हों और मौसीकी और म्यूज़िक के बग़ैर हों तो फिर तो वाकई जायज़ हैं, लेकिन अगर वो शैतानी धुनों और शैतानी अल्फाज पर मुश्तमिल हों तो बिल इत्तेफाक हराम हैं। कोई शख्स अगर हराम गाने बजाने का अमल गुनाह समझ कर करे, उस पर नादिम हो, तो फिर तो माफ़ी की उम्मीद है। मगर जब कोई कौम फ़नून लतीफ़ा आर्ट या रूह की ग़िज़ा का नाम देकर इसे हलाल ही कर ले, तो उसके लिए अल्लाह के अजाब के कोड़े से बचना बहुत मुश्किल है। अबू आमिर या अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कई लोग होंगे जो शर्मगाह यानी जिना और रेशम और शराब और बाजों को हलाल कर लेंगे, और कई लोग एक पहाड़ के पहलू में उतरेंगे, उनके चरवाहे शाम को उनके चरने वाले मवेशी लाया करेंगे, उनके पास फ़कीर अपनी हाजत लेके आएगा, वो कहेंगे कर लाना, तो रात ही को अल्लाह उन पर अपना अजाब भेजेगा और वो पहाड़ उन पर गिरा देगा और कई दूसरों की शक्लें क़यामत के लिए बंदरों और खंजीरों की शक्ल में बदल देगा। इसमें देखें क्या चीज़ें हैं। यही ख़ास तौर पर म्यूज़िक मौसीकी के दिल दाता और हक खिदमत इससे मुंह फेरने वाले, अपने आप में मगन रहने वाले। इसी तरह एक और हदीस है जिसमें है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे, उसका नाम असल नाम के बजाय और रख लेंगे। आज भी हो रहा है ना, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे और पता नहीं क्या क्या, उनके सामने बाजे बजाए जाएंगे और गाने वालियाँ गाएंगी अब तो टिकटॉकर्स ने ये सब और ज़्यादा आसान कर दिया है। अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा देगा और उनमें से बाज़ को बंदर और खिंजीर बना देगा। अल अमान अल आयाज़ु बिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकमान 20। अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। तुम पर अपनी खुली और छुपी नेमतें पूरी कर दीं। इसमें ज़ाहिरी और बातनी नेमत से क्या मुराद है? खुली नेमतों से मुराद वो नेमतें हैं जिनका इंसान अपने हवास से मुशाहिदा करता है, या वो अक़ल से मालूम होती हैं, या उसे किसी के बताने से मालूम होती हैं। और छुपी नेमतों से मुराद वो नेमतें हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर या बाहर उसके मफाद के लिए काम कर रही हैं, जिनका उसे शऊर तक नहीं कि उसके परवरदिगार ने उसके रिज़्क, उसकी नशोनुमा और हिफाजत के लिए क्या कुछ सामान फराहम कर रखा है। इंसान खाना खाकर फारिग हो जाता है, उसे खबर नहीं उसके अंदर कितनी मशीनें उसे हज़म करने, जुज़्वे बदन बनाने, फजले को खारिज करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। साइंस के मुख्तलिफ़ शोबों में जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ती जा रही है, अल्लाह की बेशुमार नेमतें इंसान के सामने बेनकाब होती जा रही हैं। अभी तो ये दुनियावी मादी नेमतें हैं, दीनी और रूहानी नेमतें जो ज़ाहिर और पोशीदा हैं वो इनके अलावा हैं और इनसे कहीं ज़्यादा हैं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। फिर इस्लाम, कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और अल्लाह की बेपाया रहमतें। इमाम राजी ने रज़ाहिरतम व बातिना की एक सादा सी पुरलुत्फ़ तौजीह बयान की है। वो फरमाते हैं ज़ाहरी नेमतों से मुराद आज़ाए इंसानी का सलामत होना और बातनी नेमतों से मुराद वो क़ुव्वतें जो इन आज़ा में बदियत की गई हैं, यानी इनके पीछे जो मशीनरी काम कर रही है, जैसे आँख, कान, नाक, जबान, गोश्त, हड्डियाँ, ये मसल्स, ये साफ़ नज़र आते हैं ये ज़ाहरी, मगर इनमें देखने, सुनने, सूंघने, चखने, बोलने की कुव्वतें बातनी। बाज़ोकात बातनी नेमत मसलन बिनाई, सुनवाई ख़त्म हो जाए जबकि ज़ाहरी उज्व आँख या कान सलामत रहता है। यही हाल हर उज्व का है। तो अल्लाह ताला ने कैसे बसारत व बसीरत से नवाज़ा है, क्या कुछ तुम्हें दिया है, अपनी खुली और छुपी नेमतें पूरी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरह लुकमान ही से मुतल्लिक। इसमें अल्लाह ताला ने और दीगर मकामात पर भी बारिश बरसने का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। वयुनज़्ज़िलुल ग़ैस। सवाल ये आता है कि महकमे मौसमियात की मालूमात फिर कैसे हैं? तो उसका जवाब यह है कि इल्म यकीन का नाम है। ज़न्न व तखमीन और गुमान या गैस या तुक के अंदाज़े को इल्म नहीं कहते। महकमे मौसमियात वाले अपने तजर्बे के मुताबिक या मुख्तलिफ आलात के हिसाब से हवा के दबाव, फिज़ा में मौजूद नमी वगैरह को देख कर बारिश होने या ना होने का ऐलान कर देते हैं। कभी उनकी बात दुरुस्त साबित होती है, कभी ना दुरुस्त। बाज़ोकात तजर्बे के मुताबिक बारिश होने के तमाम असबाब होते हैं मगर बादल एक बूंद बरसाए बगैर गुजर जाते हैं। बाज़ोकात बारिश के असबाब में से कुछ भी मौजूद नहीं होता, यकायक तमाम असबाब पैदा होकर बारिश शुरू हो जाती है। महकमे मौसमियात वालों का भी यही ऐलान है कि आज बारिश का इम्कान है। 100% इल्म ना उनके पास है ना वो इसका दावा करते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका इल्म उसके सिवा कोई नहीं जानता कि बारिश कब, कहाँ और कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि सूरह लुकमान आयत 34 है, यालमु मा फिल अरहाम। अब तो अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चल जाता है कि रहमों में क्या है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह जानता है जो कुछ माओं के पेटों में है। लेकिन आज अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डॉक्टरों को भी पता चल जाता है, तो इसका मामला ये है कि मा फिल अरहाम जो कुछ पेटों में है, ज़रूरी नहीं कि इससे मुराद सिर्फ जिन्स, जेंडर, लड़का लड़की ही लिया जाए, बल्कि इससे मुराद ये है कि जनीन यानी बेबी ज़िंदा रहने वाला है या ज़ाया होने वाला है, तवील उम्र वाला है या थोड़ी उम्र वाला है, खुशबख्त है या बदनसीब, सेहतमंद तंदुरुस्त या बीमार। तो इस सारे सिनेरियो में देखें तो वो तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। और अगर उसकी जिन्स मालूम हो भी जाए, यानी अगर इसको आप सिर्फ ख़ास कहें कि कम अज़ कम ये तो मालूम हो जाता है कि लड़का है या लड़की, तब भी कुरान के बयान पर कोई हर्फ नहीं आता। ये दावा कि अल्ट्रासाउंड से लड़के या लड़की की जिन्स मालूम हो जाती है 100% दुरुस्त साबित नहीं हुआ। ख़ुद डॉक्टर हजरात कहते हैं कि जनीन की वज़ा पेट में ऐसे होती है कि उसके आज़ाए तनासुल उसके सर के नीचे छुपे होते हैं और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से अंदाज़े ही की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाता है, जो अक्सर सही होता है और कभी गलत भी निकलता है। आपको भी इसका तजर्बा मुशाहिदा हुआ होगा। इसलिए ये कहना कि अल्ट्रासाउंड से जिन्स मालूम हो जाती है 100% दुरुस्त नहीं है, बाज़ औक़ात टेक्निकल एरर, बाज़ औक़ात समझने में गलती, बाज़ औक़ात पता नहीं क्या से क्या कुछ हो जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से 1,000 बच्चों के मुतालिक पेशीन गोई की जाए जिनमें से 999 दुरुस्त और एक गलत भी निकले तो इसे इल्म नहीं कहते, क्योंकि इल्म वही है जो यकीनी है, कभी गलत ना निकले। अलबत्ता अगर कोई ऑपरेशन करके आँखों से बच्चे की जिंस देख ले तो कुरान की बात तो फिर भी अपनी जगह कायम है। ये बात के बच्चा दानियों में क्या है अल्लाह ही जानता है, क्योंकि क्या है में लड़के लड़की की जिन्स के अलावा भी बेशुमार बातें दाखिल हैं। तो ये बहुत डीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तीन बातों का कायल पक्का झूठा है? मसरूक के हवाले से है, कहते हैं मैंने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, अम्मा जान क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है? उन्होंने फरमाया, तुमने जो बात कही इससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम इन तीन बातों से भी ना वाकिफ हो? जिन्हें जो भी तुम्हें बयान करे वो झूठ कहेगा। फिर फरमाया, तुम्हें जो भी बयान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो उसने यकीनन झूठ कहा। फिर उम्मुल मोमिनीन ने सूरह अल अनआम की आयत 103 पढ़ी, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, उसे निगाहें नहीं पाती और वो सब निगाहों को पाता है। और अशूरा 51, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, और किसी बशर के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे। ये किस लिए कि बाज़ लोग कहते हैं मेराज के मौके पर अल्लाह और मोहम्मद आमने सामने हो गए और हम कलाम हुए, और बस उस नजम की आयत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील से मुतालिक हैं उन्हें अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़िट कर देते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सारी बातों की तस्दीक की और इल्ज़ामात का रद्द किया। और जो शख्स तुम्हें यह बयान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जानते हैं जो कल होगा यानी आलिमुल गैब, तो उसने यकीनन झूठ कहा। फिर उन्होंने सूरह लुक्मान की यह आयत पढ़ी, वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाई करेगा। और इसी तरह जो शख्स ये बयान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की बात को छुपाया है, उसने यकीनन झूठ कहा। जैसे हमारे यहाँ बाज़ अहले तशरीह का, बल्कि अक्सर अहले तशरीह का ये दावा रहता है 40 पारों में से 30 बच्चे और ये हुआ वो हुआ इस तरह की, तो इससे उनके झूठे नज़रियात का पोल खुलता है। अम्मा आयशा ने आयत पढ़ी, अलमाइदा 67, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल पहुंचा दे जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की जानिब से नाजिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे शुरू हो रही है, सूरह अलिफ लाम मीम तंजील सजदा, इसकी फजीलत। बुखारी के हवाले से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत किया करते थे। आज भी बास मसाजिद वाले यूं ही एहतमाम करते हैं, हमें भी इसका करना चाहिए। जुमा के दिन हिफ्स है तो या बाजमात इमाम के पीछे फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर। सूरह अस्सजदा में एक आयत है 16, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिअ, उनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं। एक शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में यूं कहते हैं, यबीतु युजाफी जंबहू अन फिराशी इदस्तथक़लत बिलमुशरिकीन अलमज़ाजिअ, वो रात इस हाल में गुजारता है कि अपना पहलू अपने बिस्तर से अलग रखता है जब मुशरिकीन के बिस्तर उन्हें नहायत बोझल किए होते हैं। ए नबी के उम्मतियों, मुशरिकों के रास्ते पे न चलो, तुम्हारे नरम गरम बिस्तर तुम्हें बोझल न किए रखें। यभी तो युजाफ़ी जम्बहू आन फिराशी इजस्तथक़लत बिलमुशरिकीन अलमज़ाजिअ, फिर सुने इसे बार बार सुने। बुखारी में अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह अनहु से मुतालिक आया है। सूरह अस्सजदा के बाद सूरह अहज़ाब शुरू होती है जिसमें ग़ज़वे अहज़ाब का वाक़िया है। ग़ज़वे अहज़ाब से मुतालिक सवाल है कि इसका दूसरा नाम और ये कब पेश आया। ग़ज़वे अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ज़वे खंदक है, सही रिवायात के मुताबिक सन 5 हिजरी में वाक़े हुआ। सूरह अहज़ाब की खसूसियत, इस सूरत की खसूसियत यह है कि सूरत का आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबी के ख़िताब से होता है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम व तशरीफ़ मकसूद है, क्योंकि कुरान में दूसरे अंबिया उनके नामों के साथ मुखातब किए गए जैसे या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या ईसा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबी और या अय्युहर रसूल के साथ ही मुखातब किया गया। सूरह अहज़ाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 दफ़ा या अय्युहन नबी के साथ मुखातब फरमाया। पहली आयत इसकी, या अय्युहन नबी युत्तकिल्ला। दूसरा मकाम आयत 28, या अय्युहन नबी इन्ना अहललना लका अज़वाजक। और तीसरा मकाम अल अहज़ाब 45, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुन्न तुरिदनल हयात अद्दुनिया। और चौथा मकाम आयत 50, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा। और पांचवा मकाम आयत 59, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक। इससे जाहिर है कि इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती मामलात ख़ास तौर पर जिक्र हैं और मकसूद उम्मत की तालीम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरह अहज़ाब, नाम और वजह तस्मिया। इस सूरह का नाम इसके आयत 20 में आया, यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू। और वजह एक तो एक लफ्ज़ की बिना पर भी और फिर मज़मून के अतबार से इसमें ग़ज़वे अहज़ाब का मुकम्मल बयान है, जब अहले अरब में बहुत से गिरोहों ने मिलकर इस्लाम को मिटाने के लिए मदीना पर हमला किया। इस वाक़े की तफसील इस सूरह में है, इस वजह से इस सूरह का नाम अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब के मज़ामीन, ये सूरत 5 हिजरी के आखिर में ग़ज़वे अहज़ाब के ज़माने में नाजिल हुई। यह वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर नहायत मुश्किल और आजमाइश का था, क्योंकि कुरैश, गतफान, हुज़ैल और पूरे अरब के मुशरिकीन मिलकर इस्लाम को मिटाने के लिए आखिरी कोशिश के लिए 10,000 कलश्कर लेकर मदीना पर हमला आवर हुए। उनकी मदद मदीना के यहूद और मुनाफिकीन कर रहे थे। उसी ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिलियत की कुछ ऐसी रसूम को तोड़ने का हुक्म हुआ जो उस वक़्त सब लोगों के यहाँ मुसलमा थी। मसलन बीवी को माँ कह दिया जाए तो उसे माँ ही की तरह हराम समझ लेना, मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे का मकाम देकर वारिस बनाना, उसकी बीवी के साथ बहू की तरह निकाह हराम समझना, मुतबन्ना यानी मुंह बोला बेटा, अडॉप्टेड सन की रस्म, ये इतनी मुस्तहकम थी कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने अमल से उसे ना तोड़ते उसका ख़त्म होना मुश्किल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा को अपना मुँह बोला बेटा बनाया था। जाहिलियत की रसूम में से रस्म ये थी कि ग़ुलाम आज़ाद भी हो जाए तो वो उसे हकीर ही समझते और आज़ाद लोगों का दर्जा देने के लिए तैयार न थे, जबकि आपने इसे अपना बेटा बना लिया। ये एक ग़ुलाम था आज़ाद करता, आपने पहले बेटा बना लिया। फिर ये कि अपनी फूफी की बेटी ज़ैनब का निकाह जो नहायत आली ख़ानदान से थी अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद के साथ कर दिया। ये एक और अजीब बात जाहिलियत के हवाले से, मगर दोनों में मुवाफ़क़त ना हो सकी तो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे तलाक दे दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि चूँकि ख़ुद निकाह कराया है और दिलजोई के लिए ज़ैनब से निकाह कर लें, क्योंकि उसने ज़ैद से निकाह करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और उसकी दिलजोई मकसूद थी। मगर डर ये था कि पूरे अरब के मुशरिकीन मुनाफिकीन तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कर देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहू से निकाह को हराम कहते हैं और ख़ुद बहू से निकाह कर रहे हैं। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 बीवियों से निकाह जायज़ था। इससे पहले सय्यदा सौदा, आयशा, हफ्सा, उम्मे सलमा आपके निकाह में थीं, इस पर भी कुफार व मुशरिकीन को और ज़्यादा साद मचाने का मौका मिल जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अपने दिल में एक इनकबाज़ महसूस कर रहे थे, यानी ख़तरात, खदशात। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरत का आगाज़ ही इस बात से किया कि ए नबी, अल्लाह से डर और काफरों और मुनाफ़िकों का कहना मत मान। लंबी बात को मुख्तसर करने की एक खूबसूरत मिसाल है जो ये थी कि अल्लाह से डर, कुफार मुनाफिकीन या किसी और से मत डर, और अल्लाह का हुक्म मान और कुफार मुनाफिकीन का कहना मत मान। इसी सूरत से एक और सवाल अखज़ होता है कि अहज़ाब 5 में है, उदउहुम लिआबाइहिम, औरत का अपने नाम के साथ खामंद का नाम लगाना कैसा है। आयत में गैर बाप की तरफ निस्बत से मना किया गया है और बाप की निस्बत से बुलाने का जिक्र है, उन्हें उनके बापों की निस्बत से ही पुकारो। यानी अगर कोई किसी का केयर टेकर और गार्डियन है तो उन्हें उनके बापों के नामों से ही पुकारा जाएगा। बल्दियत के खाने में बाप का नाम ही आना चाहिए। इसी तरह ले पालक का मसला है, अडॉप्टेड सन, आप ले पालक ले सकते हैं लेकिन वल्दियत में उसके वालिद का नाम ही आएगा। प्यार से किसी को बेटा कहने में कोई हर्ज नहीं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस रदियल्लाहु अन्हु को या बुनैश कहकर पुकारते। इसी तरह एक और रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बच्चों को थपकियाँ देते हुए फरमाया, ऐ बुनैश, ऐ मेरे प्यारे बेटो। रहा औरत का अपने नाम के साथ खामद का नाम लगाना, ये ऐसे ही वो आज़ाद है जैसे किसी को अपना नाम रखने का इख्तियार होता है। अपना नाम रखने की इजाज़त है जब तक कि वो गुनाह का ना हो, कोई भी रख सकते हैं, फ़र्स्ट नेम सेकंड नेम, तो फ़र्स्ट नेम के साथ कोई भी सेकंड नेम लगाया जा सकता है जब तक उसमें कोई कबाहत और गुनाह ना हो, लेकिन वो भी उसकी ज़ौजियत के खाने में शुमार होगा, वल्दियत के खाने में नहीं। ये अपने खाने में अपना फ़र्स्ट सेकंड नेम जो भी लगाएं, वल्दियत के खाने में वालिद का नाम और ज़ौजियत के खाने में खामद का नाम, इस तरह पुकारा जा सकता है। मसलन किसी के खामद का नाम अहमद है और वो अपना सेकंड नेम भी अहमद लगा दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जबकि आईडी कार्ड में, डॉक्यूमेंटेशन में, ज़ौजियत में ज़ौज का, वल्दियत में वालिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग़ज़वे अहज़ाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशआर और सहाबा का जवाब बड़े ईमान और अमल बूस्टिंग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नल आयशा आयशा लाखिरा फ़ग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखरत की ज़िंदगी है, सो तू अंसार और मुहाजरीन को बख्श दे। सहाबा ने आपके जवाब में क्या कहा, نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا। हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहाद पर बैत की हमेशा के लिए, जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब में कहते, اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره। ऐ अल्लाह, खैर तो बस आखरत ही की खैर है, सो तो अंसार व मुहाजिरीन में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें भी किसी न किसी माना में उनकी आल और मुत्तबियाइन में शुमार फरमा, आमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदीना का पुराना नाम क्या था? अहज़ाब 13 में आया, या अहल यथरिब, यसरिब मदीने का पुराना नाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इसका नाम मदीनतुन्नबी पड़ गया, जो फिर इख्तसार के साथ मदीना मशहूर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मक्का से ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जो खजूरों वाली है, मुझे गुमान हुआ कि वो जगह यमामा या हजर है, लेकिन वो यसरिब यानी मदीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने और अपनी आल के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा जाल रिज़्क़ आल मुहम्मदिन क़ूता। ए अल्लाह, आल मुहम्मद का रिज़्क गुजारे के बराबर करते। आप अंदाज़ा लगाइए, इसमें बहुत हमारे लिए झंझोड़ देना है, जो बच्चों के लिए जोड़ते जोड़ते नहीं सकते, हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते। हमारे नबी की दुआ देखें अपनी आल के लिए। इसी तरह एक वो दुआ भी, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व अहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह, मुझे मिस्कीन होने की हालत में ज़िंदा रखना, मिस्कीन की हालत में मौत दे, मिस्कीनों की जमात से उठा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्यों? आपने फरमाया, वो जन्नत में अपने अग्निया से 40 साल पहले जाएंगे। ज़ाहिर ज़िंदगी का ये मियार नहायत सब्र आजमा और मुश्किल है। इस मियार ज़िंदगी में आपके साथ अजवाज मुतहरात भी शरीक थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईला से मुतालिक है, जो इसके बाद पेश आया और फिर उसका नतीजा क्या निकला। फतुहात के नतीजे में जब मुसलमानों की तो हालत कुछ बेहतर हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी नान नफका में इजाफे का मुतालबा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत अपने जोहद और कनात की ज़िंदगी तर्क करने के लिए तैयार ना थे। आपने कसम उठा ली कि मैं 1 माह तक अपनी बीवियों के पास नहीं आऊँगा। इसे ईला कहते हैं, लिल्लज़ीन युलून, वो भी इसी पर है। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होने की इजाज़त चाही। आपसे पहले भी लोग वहाँ मौजूद थे लेकिन किसी को इजाज़त ना मिली सिवाय अबू बकर और उमर के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और आपके गिर्द आपकी बीवियाँ हैं, आप गमगीन और ख़ामोश हैं। फरमाते हैं, मैंने कहा, मैं ज़रूर कोई ऐसी बात करूँगा जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाऊँगा। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आप खारिजा की बेटी यानी मेरी बीवी को देखते, उसने मुझसे ख़र्चा मांगा तो मैंने उठकर उसकी गर्दन दबा दी। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمانے لگے، یہ سب میرے ارد گرد بیٹھی ہیں۔ تو ابو بکر، عائشہ اور عمر حفصہ کی گردن دبانے کے لیے اٹھے۔ وہ دونوں کہنے لگی، اللہ کی قسم، ہم کبھی وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگیں گی جو آپ کے پاس نہ ہو، پھر آپ ان سے ایک ماہ یا 29 دن، جو مہینے کا ہی ہے، علیحدہ رہے۔ پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جو ایک مہینے تک جاری رہی۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس آئے، ان کو یہ آیت سنائی، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم آپ کو چنتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے طور پر فیصلے کے بجائے پہلے اپنے والدین سے بھی مشورہ کرو، پھر کوئی اقدام کرنا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کو چننے میں کسی سے مشورہ کروں گی؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے اپنی باقی بیویوں کو بھی اختیار دیا، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو سیدہ عائشہ نے فرمائی۔ نیکسٹ کوسچن ازواج مطہرات کے تعارف اور تعداد کے حوالے سے ہے۔ آپ کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، آپ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ۔ آپ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد انہیں سے تھیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے شادی اور ان کی فضیلت کے بیان میں۔ اس باب کے تحت سیدہ عائشہ کی حدیث ذکر کی، جس میں وہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے معاملے میں میں نے اتنی غیرت نہیں محسوس کی جتنی سیدہ خدیجہ کے معاملے میں محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کی بنا پر میرے دل میں ان کے لیے غیرت جاگتی تھی۔ دوسری زوجہ سیدہ سودا بنت زمع بن قیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نبوت کے 10ویں سال شادی کی تھی۔ آپ کی تیسری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی، پھر جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال تھی۔ یہ بخاری کے حوالہ جات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے علاوہ کسی اور کنواری خاتون سے شادی نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، جس وقت حفصہ بنت عمر کے خاوند پہلے خاوند ان کے خنیس بن حذافہ سہمی فوت ہو گئے، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے اور بدری صحابی تھے۔ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں عثمان سے ملا رضی اللہ عنہ اور انہیں اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ پیش کیا اور کہا، اگر آپ چاہیں میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی حفصہ سے کر دیتا ہوں۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کچھ دن انتظار کرتا رہا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے لیے آج واضح ہو گیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں نے ابو بکر سے بات کی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی چپ سادھ لی، کوئی جواب نہ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے ان کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ پھر عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا انکار، کہتے ہیں، میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ ابھی کچھ دن ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا اور میں نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، شاید آپ کو میرے اس دن کے طرز عمل سے تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حفصہ کے متعلق مجھ سے بات کی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہاں تکلیف ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا، آپ کی بات کا میں نے صرف اس لیے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میرے علم میں آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر مجھ سے کیا تھا اور میں آپ کا راز آؤٹ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیتے تو میں نکاح کر لیتا، لیکن آپ پہلے بتا چکے تھے تو وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوجہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہجرت کے بعد 31ویں مہینے رمضان میں ہوئی تھی۔ آپ کی چھٹی زوجہ ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہا، وہی جو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا کی مشتاق تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں زوجہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا غزوہ بنی مستلق کے قیدیوں میں قید ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنی آزادی کے لیے مکاتبت کے سلسلے میں تعاون چاہا، تو آپ نے انہیں مکاتبت کی ساری رقم ادا کر کے نکاح کی پیشکش کی، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر ٹھہری۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بنو مستلق کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی بن گئے ہیں، تو سب نے اپنے اپنے حصے میں آنے والے قیدیوں کو احتراماً آزاد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ یعنی جویریہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی خاتون اپنی قوم کے لیے اتنی برکت کا باعث نہ بن سکی کہ قوم کی آزادی بن گئی، اور اس کا اثر ان پہ یوں ہوا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے، یعنی اس سے بھی زیادہ برکت۔ آپ کی آٹھویں زوجہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، آپ ہی کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا۔ اس بنا پر سیدہ زینب فرمایا کرتی تھیں، تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کی اور میری شادی اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کی۔ ازواج مطہرات کے سامنے یوں ذکر کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں زوجہ سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، ابو داؤد کے حوالے سے ہے، وہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ پہلے عبید اللہ بن جحش کی زوجیت میں تھیں اور وہ حبشہ میں فوت ہو گئے، تو نجاشی نے ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی اور اپنی طرف سے ان کو 4000 درہم مہر بھی ادا کیا۔ پھر انہیں سرحبیل بن حسنہ کی میت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اسی سے آن لائن نکاح کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے وہاں نکاح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، جن کے متعلق آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے احرام کی حالت میں شادی کی، تو محققین نے ذکر کیا کہ احرام کی حالت یہ جو ہے عام طور پر نکاح نہیں ہو سکتا، یہاں جو ذکر آیا ہے یہ راوی کا وہم ہے، اور صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے شادی عمرۃ القضاء، یعنی صلح حدیبیہ کی وجہ سے جو عمرہ ادا نہیں کر سکے تھے اگلے سال قضا دی تھی، تو اس کے احرام کھولنے کے بعد کی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کو اس کا پتہ نہیں تھا، اس بنا پر انہوں نے یوں ہی ذکر کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے احرام کی حالت میں شادی کی۔ بہرحال امت کے لیے تو وہی حکم ہے کہ احرام میں شادی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں زوجہ سیدہ صفیہ بنت حج بن اختب رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ خیبر کے بعد انہیں آزاد کر کے، یہ بھی ایسا لونڈی آئیں تو آپ نے انہیں آزاد کر کے غزوہ خیبر کے بعد ان سے شادی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن کے ساتھ آپ نے خلوت اختیار کی تھی، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئیں، یعنی سیدہ خدیجہ اور زینب، بقیہ 9 ازواج آپ کی وفات کے وقت تک زندہ رہیں۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، تو جو 9 کا ذکر آتا ہے وہ اس بنا پر آتا ہے۔ بقیہ ماریہ قبطیہ اور ریحانہ، ان کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں کی حیثیت سے ہے، یعنی یہ لونڈیاں تھیں، آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بطور لونڈی کی حیثیت سے تھے، زوجہ کی حیثیت سے نہیں۔